शांति। आदरणीय रामनाथ भाई जी, आप 1972 में इस बाबा को पहचान कर बाबा के ज्ञान में आए, और जब से ज्ञान समझ में आया तभी से ज्ञान अमृत बांटने की सेवा, ज्ञान अमृत छलकाने की सेवा आप करने लगे। हमारे रामनाथ भाई जी, धार्मिक प्रभाग में आप यहाँ हेडक्वार्टर के मुख्य हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, और धार्मिक प्रभाग की सेवाएं आप हर जगह प्रदान करते हैं, अपने देश में भी, विदेशों में भी। तो आज हम आपसे सीखेंगे कारणों का निवारण करके विश्व परिवर्तन की सेवा में कैसे सहयोगी बने। कारण ना बताएं, निवारण स्वरूप बन जाएं। हम आदरणीय रामनाथ भाई जी से सुनेंगे।
ओम शांति। इस सारे विश्व को परिवर्तन करने के लिए शिव बाबा इस धरती पर आए हैं, और अकेला शिव बाबा नहीं है, शिव बाबा के साथ ब्रह्मा बाबा भी है, और ब्रह्मा बाबा के साथ हम सब ब्राह्मण भी हैं। सभी के सहयोग से ये तमोप्रधान विश्व को शिव बाबा सतोप्रधान में परिवर्तन कर रहा है। लेकिन उस परिवर्तन के कार्य में बाबा कहता है बहुत सारे कारण है। ये सृष्टि तमोप्रधान क्यों बनी, इतना दुखी क्यों बनी? क्योंकि भगवान ने जो सृष्टि स्थापन किया था वो स्वर्ग स्थापन किया था, हर एक आत्मा को सुख देने के लिए सृष्टि बनाई थी। लेकिन सुख से दुख में परिवर्तन होने के लिए बहुत सारे कारण है। तो बाबा कहता है बच्चे, कारण को सोचेंगे आप तो आपके पास उसका सॉल्यूशन नहीं है। सिर्फ आप ये सोचो कि निवारण क्या है। कारण एक बहुत बड़ा जंजाल है, उस जाल को आप सोचने लगेंगे तो उसी में फंस जाएंगे। अब ये समय ऐसा है कि हर कारण का निवारण क्या है। संसार में हर सेकंड, हर कदम में समस्या है, ऐसी परिस्थिति है, ऐसी बातें हैं। उसको न देख करके आप ये कर सोचना चाहिए कि बाबा ने कहा इसका निवारण क्या करो। उदाहरण के लिए देख लो, गर्मी आई तो इस हॉल में अपने आप पंखे लग गए, अपने आप आसमान से आए, अपने आप आ गए, पंखे कहां से लग गए? तो उसके लिए कुछ मेहनत किया, उसके लिए खर्चा किया, मार्केट में जाके लाए, अपने आप तो नहीं आए ना, प्रबंध किया ना। हर चीज के लिए ऐसे ही, कुछ भी गर्मी आने से पहले, पहले से इन एडवांस सोचते, गर्मी आने के बाद नहीं आए। आप सभी आने से पहले गर्मी आएंगी, बहुत गर्म होगा हॉल में, तो प्रबंध पहले से किया जाता है कि फैन लगाना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बच्चों को सुख मिलना चाहिए, शांति से बैठ करके ज्ञान सुनना चाहिए, तो प्रबंध किया जाता है। तो वो इन एडवांस तैयारी करते हैं। तो ऐसे हमारे जीवन में भी हर प्रकार के, हर कदम में किसी न किसी प्रकार की परिस्थिति आ सकती है, क्योंकि बहुत जन्मों के हिसाब किताब है। कितने सत्युग से हम आए, अभी अंतिम समय है, बहुत जन्मों से लेन देन किया हुआ है, हिसाब किताब जमा है, वो सब चुकतु करके वापस जाने का है। तो हमारा ये लक्ष्य लेके हम इस ज्ञान मार्ग पे चले हैं, तो लक्ष्य बुद्धि में एक ही रहना चाहिए कि हमें निवारण ढूंढना है। अब क्या करना है, परिस्थिति आए अभी मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन वो विचार भी उसी के मन में आ सकता है जिसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि चाहिए, स्वच्छ बुद्धि चाहिए, नहीं तो कारण का ही कारण सोचते रहेंगे। तो निवारण किसके बुद्धि में आएगा, जिसकी बुद्धि दिव्य है, स्वच्छ है, ज्ञान युक्त है, नॉलेज फुल कहा, सर्व शक्तियों से भरा हुआ है। ऐसी शक्तिशाली आत्मा के सामने कोई भी परिस्थिति आती है तो तुरंत निवारण सामने आता है, ये करना चाहिए। अगर ज्ञान और शक्ति नहीं है, बुद्धि स्वच्छ नहीं है, तो कारण का ही चिंतन चलता है, और उसके कारण जो समस्या 1% होती है वो देखने में पहाड़ जैसी लगती है। नहीं, अगर समझ है, ज्ञान है, शक्ति है, तो पहाड़ जैसी समस्या भी आपको एक रुई जैसी लगती है। क्योंकि निवारण आपके सामने तैयार है, क्या करना चाहिए हमको। लेकिन वो निवारण कैसे आएगा, किस परिस्थिति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो बाबा ने कहा, बच्चे खजाने जमा होने चाहिए। तो अपने आप को देखो, मेरे अंदर दुनिया में लोग कहते हैं तकदीर बना के आए हो, भाग्यवान आत्मा हो, तो हमने पुण्य क्या जमा किया है, हमारे का जमा के खाता क्या है? अगर आप देख लो घर में भी एसी लगानी है, गर्मी आ गई है, तो अपने आप तो नहीं आएगा, उसके लिए जेब देखना पड़ेगा, जेब में कितने पैसे है ना। तो पैसा कहां से आएगा, अपने आप भी नहीं आएगा, कमाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आएगा ना। तो यहां भी ऐसा ही है, अगर जितना आप पढ़ाई पर और योग के ऊपर ध्यान देते हो, तो योग से सर्वशक्ति अपने अंदर भरते हो। तब बाबा ने कहा, शांति की शक्ति जमा करो, तब कितना भी नेगेटिव परिस्थिति हो, उस नेगेटिव को आप पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हो। अगर अपने अंदर शांति की शक्ति नहीं है, सामने नेगेटिव व्यक्ति, परिस्थिति, बातें ही दिखाई देती है, कारण हमारे अंदर निवारण करने के चिंतन ही नहीं है, शक्ति नहीं है, पैसे नहीं है, तो कैसे आप परचेज करेंगे? कोई भी मार्केट में जाएंगे, कुछ परचेज करना है तो पहले पैसे देखेंगे ना, हमारे अंदर कितने पैसे हैं हमारे पास, उसी प्रकार से वस्तु लेंगे। तो यहां भी कोई भी साधन चाहिए, कोई परिस्थिति को आपको निवारण करना चाहते हो, तो भी देखना चाहिए आत्मा के अंदर कितने खजाने हैं, किस किस प्रकार के खजाने भरे हैं। खास करके बाबा ने कहा, तीन प्रकार के खजाने जांच करो, एक स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा कितनी शक्ति जमा किया है। आपको हमसे योग लगता नहीं है, समय नहीं है, तो किसको बताएंगे हम? पैसे नहीं है, बहुत गर्मी लग रही है, ट्रेन में चलना है, गर्मी लगती है, एसी टिकट नहीं ले सकते हो, तो गर्मी सहन करना पड़ेगा ना, और कोई सॉल्यूशन नहीं है, या सहन करो या सॉल्यूशन ढूंढो। सॉल्यूशन उसको मिलेगा जिसके पास ताकत है। तो इसके लिए बाबा कहते हैं, अभी से इन एडवांस बाबा बार बार कहते आया, इस साल बच्चे अचानक परिवर्तन होगा, अचानक कभी भी किसी प्रकार की परिस्थिति सामने आ सकती है, इसलिए इन एडवांस अपने को तैयार करो, किसी भी परिस्थिति आ जाए हम सामना कर सकते हैं, समा सकते हैं, और कहीं सहन भी करना पड़ता है, सहन करने के लिए भी हमारे पास शक्ति है। कहीं कहीं कर्मों के अंदर अपने आप को विड्रॉ करना पड़ता है, उस परिस्थिति से, उस कर्मों से अपने आप को मुक्त रखना पड़ता है। तो ये सारी शक्ति कहां से आएंगी? किसी समय पर एक सेकंड के अंदर निर्णय लेना पड़ता है, परखना पड़ता है डिस्क्रिमिनेशन पावर का, तो वो कहां से आएंगे? अपने आप तो नहीं आएंगे ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा, ये खजाने जमा किया है, एक सबसे पहले कहा कि बच्चे शांति की शक्ति जमा करो। अब शांति की शक्ति क्या है? तपस्या है, याद, योग और तपस्या है। चलते फिरते कर्म करते करते बार बार याद आता है, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा था याद है? सवेरे बाबा ने बहुत सुंदर एक महावाक्य सुनाया, बुद्धि को हल्का रखो तो बाप पलकों पर बिठा के ले जाएगा। अगर बुद्धि के अंदर बहुत सारा चिंतन है, भारीपन है, तो पहले भारी है, और शिव बाबा कौन है, कितना हल्का है, तो कैसे हमको उठा के ले जाएगा? तो बाबा कहता है, बच्चे बुद्धि के अंदर कोई चिंतन नहीं है, फ्री मुक्त, क्यों? सर्वशक्तियां है, समझ है हम किसके साथ है, हमारा साथ कौन है? सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे कहते हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हैं, है ना, हमारा रक्षक कौन है? स्वयं भगवान, उनके बच्चे, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो भगवान जिसके साथ है, तो उसको और कुछ करने की जरूरत है? अगर अकेला महसूस करते हो, तो सोचना, हर कदम रखते समय सोच समझ के रखना पड़ता है। अगर कोई बच्चा देखो मां बाप के साथ जाता है, तो मां बाप हर बच्चों के कदम पर ध्यान देते हैं, कांटा नहीं लगना चाहिए, पत्थर नहीं लगना चाहिए, है ना, तो माँ बाप की चिंता है, जिम्मेवारी है, बच्चा निश्चिंत है, बेफिकिर है, कोई चिंता नहीं उसको। अगर ऐसे संसार में चलते हुए इस संगम पर अगर बुद्धि को फ्री रखना चाहते हो और बाबा के साथ जाना है तो बाबा भगवान को अपना साथ रखो। तब बाबा ने को कब होगा, अपने आप तो नहीं मिलेगा, तो सवेरे उठकर उस प्रकार की साधना चाहिए। अमृत वेले बाबा ने खास कहा कि बच्चे 15 मिनट आधा घंटा विधि पूर्वक तपस्या करो। ऐसे सारी दुनिया तपस्या करती है, सारी दुनिया भगवान को याद करती है। मीरा ने भी कितना भगवान को याद किया तो भी स्वर्ग में तो नहीं आएंगे ना। शास्त्रों में कहा विश्वामित्र ने कितनी तपस्या किया तो भी क्रोध को जीत नहीं सका है। तपस्या करना ही सब कुछ नहीं है, आप जानते भी हो। सिर्फ एक कागज आप धूप में रख दो, बहुत तेज सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज जलेगा? निरंतर सूर्य की किरणें पड़ रही है, नहीं जलता है। वही कागज है, वही सूर्य की किरणें हैं। अगर एक ग्लास आप पकड़ते हो और आपका हाथ हिलता नहीं है, एक सेकंड के अंदर कागज जल के भस्म होता है, कोई चमत्कार नहीं है। वही हमारा राजयोग है। बाबा कहता है ज्वाला स्वरूप चाहिए, मन बुद्धि को परमधाम में टिकाओ। कौन? शिव बाबा सर्वशक्तिवान है, पतित को पावन बनाने आया है। जब तक उसके ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र नहीं किया, अभी यहां बैठे हो आप, देखना आप साक्षी होकर के, हमको लगता आंखें खुली है, हमको ही देख रहे हो आप, बिल्कुल आंखें खुली है। एक देखते देखते सुनते सुनते एक दफा घर में चक्कर लगा के आते हो, है ना। मन कितना तीव्र गति से कहां चला जाता है। बुद्धि यहां बैठे बैठे हुए भी दुनिया को देखते हो आप, दिखाई देता अपने आप। जहां आपका संबंध है, जिसके साथ कनेक्शन है, वो चित्र यहां बैठे बैठे आंखें खुली भी है, सुन भी रहे हैं, लेकिन एक सेकंड के अंदर कहां से कहां चले जाते हो। ये भी ध्यान है, ये भी मेडिटेशन है, लेकिन किसके साथ है? देहधारी के साथ है, व्यक्ति के साथ है। किसी को यहां बैठे बैठे कोई वैभव दिखाई देता है, रास्ते पर चलते समय आपने बहुत सुंदर एक फ्लावर पॉट देखा था, इच्छा थी लेना चाहिए था, लेकिन यहां बैठे बैठे याद आया वो फ्लावर पॉट लेना था, बहुत सुंदर था। तो यहां बैठे बैठे आंखें खुली सुनाई भी दे रहा है, लेकिन बुद्धि के सामने वो दृश्य आता है, क्योंकि बुद्धि के अंदर वो बैठा हुआ है। तो बुद्धि हमारी स्वच्छ नहीं है। तब बाबा ने कहा योग के द्वारा मन और बुद्धि को स्वच्छ करते हो तो टचिंग और कैचिंग हो जाएगा, बाबा के संदेश को आप कैच कर सकते हो। ऐसी जब परिस्थिति आएंगी, ऐसी समस्या आएंगी संसार में चलते चलते, बाबा आपको टचिंग देगा। बुद्धि की लाइन क्लियर है, आप कैच कर सकते हो। अगर बुद्धि पर पहले से किसी ना किसी का प्रभाव है, कोई इच्छाएं है, कामनाएं है, बुद्धि भारी है, कैसे कैच करेगा? एक कुर्सी पर तो एक ही व्यक्ति बैठेगा ना, दो व्यक्ति नहीं बैठ सकता है। पहले से एक का बुद्धि पर प्रभाव है तो वो बुद्धि आंखें खोल के कैसे देख सकता है? तब कहा बुद्धि फ्री चाहिए, लेकिन बहुत जन्मों के उसके पर प्रभाव है, फ्री कैसे होगा, मुक्त कैसे होगा? उसके लिए साधना चाहिए। और साधना की विधि भी है, जब भी योग में बैठते हो अगर आप शांत होकर बैठो, मन खाली नहीं रहता है, कहीं ना कहीं इधर उधर भागता है, मन के अंदर किसी न किसी प्रकार के विचार जागृत होते हैं। हाँ, मन के अंदर कुछ चिंतन करते हो आप, बुद्धि भी खाली नहीं रहती है, बुद्धि के अंदर बहुत सारे प्रभाव है। कुछ ना कुछ 10 साल पहले किसी ने कुछ कहा, वो आपको यहां बैठे बैठे याद आ जाएगा। तब कहा योग हमारा राजयोग एक ऐसी विधि है, ये मन और बुद्धि ये दोनों शक्तियों को पहले जोड़ देना चाहिए एकाग्रता का। नहीं तो मन कुछ सोचता है, बुद्धि और कुछ आपको याद दिलाती है। तो इन दोनों शक्तियों को पहले एक करना चाहिए, फिर सूक्ष्मतन में बाप दादा से या परमधाम में जितना समय जोड़ते हो वो शक्ति ग्रहण करता है। वो शक्ति हमारे अंदर जितने भी पापों का कोटिंग है, प्रभाव, सबको साफ करता है। तो वो विधि चाहिए। देखा गया योग में बैठते हैं, कोई इधर देखता है, कोई उधर देखता है, कोई आ रहे जा रहे, हमको क्या करना है? हम किसके लिए आके बैठे यहां? लक्ष्य क्या है? कोई आंखें बंद करके बैठते हो, है ना, कोई मन के अंदर चिंतन करता है। हाँ, मन चल रहा है, मन चलते चलते अच्छे विचार करते हुए बुद्धि के अंदर तुरंत किसी की याद आ जाती है, तो कहते योग में बैठो तो व्यर्थ विचार आता है, कहां से आ रहा है? तो योग करने की विधि चाहे सहज है, किससे? पहले शुरू में ऐसे करो कि आप सभी संसार में रहते हो तो विधि रोज अपनानी पड़ती है। अपने आप एक बार सुनने से, श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए, तो उसकी भी विधि चाहिए। इसलिए जब भी योग में बैठते हो आप, पहले मन बुद्धि से प्रश्न करता है 5 मिनट। तब बाबा ने कहा पहले विधेयी बनो, अशरीरी बनो, आत्म अभिमानी बनो, फिर मुझे याद करो। कि जो विकर्म जो है वह आत्मा के अंदर है, शरीर के अंदर नहीं। आत्मा को शरीर के भान से अलग करना चाहिए। तो कैसे करेंगे, विधेयी कैसे बने? तो उसके लिए 5 प्रश्न है। पहले अपने आप से पूछो, यहां आके बैठते के सारे दिन में शरीर के भान में रहते हैं, शरीर को यूज करते हैं, शरीर के इंद्रियों के द्वारा हर सेकंड कर्म चलता रहता है। तो उसको कहा बॉडी कॉन्शियस, शरीर के भान में रहते हैं। योग में जब बैठते हो खास आके, शरीर का कोई काम नहीं है, आत्मा को परमात्मा को याद करना है, लेकिन आत्मिक स्मृति में स्थित होना चाहिए। तो आत्मा को जागृत करो। मन पूछता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है हां मैं आत्मा हूं। फिर मन पूछता है मेरा रूप कैसा है, हां सफेद चमकता हुआ सितारा इस ब्रकुटी के बीच में बैठा हुआ है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। मन पूछता है अगर मैं ये सितारा हूं तो मेरे गुण कौन से है, आत्मा के 7 गुण है, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। नहीं तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि और कोई भटक रही है, तो जो चिंतन करते उसको जवाब नहीं मिलता है, तो दूसरे विचार आते हैं, तब आप कहते हो योग नहीं लग रहा है। तो ये दोनों शक्तियों को आमने सामने लाना चाहिए। तो मन बुद्धि से बात करता है कि मैं कौन, फिर मेरा रूप, तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से, 7 गुण, अनादि अविनाशी आत्मा के गुण है, उसको याद करो, जागृत करना पड़ता है। मैं जब शुरू में आया कैसे था, संपूर्ण पवित्र आत्मा था, तो याद आती कि मुझे ऐसे बनना चाहिए, इस स्मृति को जागृत करना पड़ता है बार बार। तीसरा पूछो, चौथा पूछो, अगर मेरे पास ये 7 गुण है तो मैं यहां बैठ के क्या करता हूं, तो ये शरीर को चलाता हूं, शरीर अलग मैं अलग। 5वां प्रश्न है तो मैं कहां से आया, जानते हैं मट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया, कल मट्टी में मिल जाएगा, तो हम कहां से आए, यहां से नहीं ऊपर से आए, तुरंत बुद्धि जवाब देती है। फिर प्रश्न करता है अगर ऊपर से आए, ऊपर क्या है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे सूर्य चांद सितारों से ऊपर सूक्ष्म तन है। तो मन और बुद्धि दोनों साथ साथ चल रहे हैं, नहीं तो एक नीचे एक ऊपर। तब कहते हैं योग में बैठे अनुभव नहीं होता है। अनुभव कौन करेगा, बुद्धि करती है। जिसकी बुद्धि काम नहीं करती उसको हम कहते हैं डल इंटेलेक्ट, बुद्धू कहते हैं, है ना। तो बुद्धि अनुभव करती है, बुद्धि महसूस करती है, बुद्धि रियलाइज करती है, हां पहले हम ये थे अब ये है, फिर से हमें ऐसे बनना चाहिए। क्योंकि जब तक बुद्धि ने महसूस नहीं किया है तब तक परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन चाहते हो तो महसूस करना जरूरी है। तो जैसे जैसे मन ये प्रश्न पूछते जा रहे हो, बुद्धि अनुभव करती है हां हम ऊपर आ गए, सूक्ष्म तन है, सफेद प्रकाश तत्व है, यहां ब्रह्मा बाबा की आत्मा है, सूक्ष्म शरीर है, अपने आप बुद्धि अनुभव करती है, उस वातावरण में जाते हैं। उससे ऊपर क्या है, मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है, परम धाम है। परम धाम में कौन रहता है, शिव बाबा कौन है, शिव बाबा के पास क्या है, प्रश्न करते जाओ, बुद्धि अपने आप जवाब देती जाएंगी, दोनों साथ साथ है। तो एक एक शिव बाबा की शक्ति ले लो, शिव बाबा पवित्रता का सागर है, बाबा शक्ति दे दो, मांगो नहीं, हम बाप के बच्चे हैं। जैसे शिव बाबा था ऐसे ही हम भी परम धाम में बाबा के साथ थे, अनादि स्मृति, यहां आने से पहले हम कहां थे, वो स्मृति अपने आप जागृत होती है। हम परम धाम में शिव बाबा के साथ थे, कैसे थे हम, बाबा कौन और मैं कौन, अपने आप से और बाबा से कंपेयर करो। जितना सेकंड मन बुद्धि वहां रहती है तो बुद्धि शक्ति को ग्रहण करती है, बुद्धि स्वच्छ होती है। अब बुद्धि जितनी स्वच्छ है तब उसके बाद जो ज्ञान सुनते हो, मुरली रोज सुनते हो, सुनते ही आपको बुद्धि अपने आप ग्रहण करता है, याद रहता है। आज बाबा ने ये कहा था, जब कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हो, कर्म करते करते कहीं गलत काम हो जाता है, तुरंत बुद्धि याद दिलाती है, बाबा ने आज ये कहा था, बाबा ने आज कहा था ऐसे कर्म करना चाहिए। अगर आपके साथ एक बच्चा जाता है, कुछ गलत करता है, तो कौन समझाते उसको, आप समझाएंगे ना, आप समझते हम समझदार है, बड़े हैं, तो बच्चों को समझाते हो। अगर हमारे मन में गलत विचार आता है तो हमें कौन समझाएगा। जो सवेरे ज्ञान सुना है, बुद्धि के अंदर जागृत है, तुरंत बुद्धि मन को समझाती है। पुराने संस्कार निरंतर मन में जागृत होते रहते हैं, बहुत प्रकार के पुराने कर्म किए हुए हैं। मन में किसी व्यक्ति को देखते मन में घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, गलत विचार आ सकता है, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में रहते चारों तरफ। लेकिन सवेरे ही बाबा ने योग सिखाकर, योग करके बुद्धि को दिव्य बनाया है, उसके बाद मुरली सुनाया है, पालना करता है, मुरली के पॉइंट अगर याद है तो तुरंत बुद्धि मन को समझाती है, नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, उसने अपना काम किया, वो गुस्सा करेगा, वो परेशान करेगा, तो उसका पार्ट है, वो अपना पार्ट बजाएगा। लेकिन मुझे शिव बाबा ने कहा, बच्चे तुम्हें चुप रहना है, तुम्हें सहन करना चाहिए, इसलिए सवेरे सहन करने की शक्ति दिया है। इसलिए सवेरे का व्यक्ति को देख के परख लो, निर्णय करो अभी मुझे क्या करना चाहिए, कि सवेरे जो योग किया अष्ट शक्तियां प्राप्त होती है। कहां कहां संसार में सहन करना पड़ता है, कहां कहां सामना भी करना पड़ता है, जवाब भी देना पड़ता है, लेकिन सभ्यता से, नम्रता से, निर्माणता से, ये कहां से आएंगे, अपने आप मिलेगा नहीं। अमृत वेले अगर इस विधि पूर्वक अगर आप तपस्या करते हो, बुद्धि शक्ति को ग्रहण करती है। शिव बाबा कौन है, सर्वशक्तिवान है, तो आपको एक एक शक्ति सवेरे भरता है बच्चों के अंदर, तब कहते दिव्य बुद्धि स्वच्छ हो जाती है। दिव्य बुद्धि के अंदर, स्वच्छ बुद्धि के अंदर जो ज्ञान सुनते हो वो ज्ञान याद रहता है। नहीं तो कितना भी हम सुनते हैं, आप देखने एक दिन दो चार दफा मुरली पढ़ो, अगर अमृत वेला आपने योग नहीं किया है, बार बार मुरली पढ़ो तो देखना मुरली के पॉइंट आपको याद नहीं रहेगा। कोशिश करके देखना, सवेरे योग नहीं करो, मुरली क्लास में आके बैठो, मुरली लिखो भी आप, और दरवाजे से बाहर जाते किसी को पूछना, आज बाबा ने क्या कहा, कहते बहुत अच्छा कहा था, क्या था वो बताओ, एक सेंटेंस भी पूरा रिपीट नहीं कर सकते हैं, प्रयोग करके देखना। क्योंकि बुद्धि इतनी तमो प्रधान बन गई है तो ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकती है, बुद्धि में ठहर नहीं सकता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर विधि बनाया, बच्चे अमृत वेले मंदिर में भी जाते हो, पहले स्नान करते हैं, तो पहले आत्मा को शक्तियों से स्नान कराओ, अष्ट शक्तियों से स्नान कराओ, फिर ज्ञान उसके अंदर धारण हो जाएगा। अपने आप धारण होना चाहिए, संभव नहीं है। देख लो आप कितने एक एक बार कहते हैं कि हमने दो दफा तीन दफा मुरली पढ़ी, एक भी पॉइंट बुद्धि में सही रूप से याद नहीं रहता है। अगर ज्ञान सही रूप से विधि पूर्वक याद नहीं है तो उसको आप यूज कैसे करेंगे। जैसे डॉक्टर ने दवाई दिया था, दो गोली दिया, ये सवेरे लेना चाहिए, ये शाम को लेना चाहिए, आप कहेंगे याद ही नहीं है, शाम की गोली सवेरे ले लिया, जल्दी ठीक हो जाएगा ना, पेट तो एक ही है, कोई अर्जन, शाम की गोली सवेरे ले लो, सवेरे की गोली शाम को ले लो, चलेगा नहीं। हर विधि है, हर कर्म के लिए विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। मन मर्जी हमको अच्छा लगता है, कभी कभी देखते हैं कोई कहते हैं हमको ऐसे योग करने से बहुत अच्छा लगता है। हाँ अच्छा लगता है, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी विधियां हैं। अब दुनिया को फॉलो करेंगे कि शिव बाबा को फॉलो करेंगे? दुनिया को आधा कलप फॉलो करके देखा हमने, उससे हमारे पाप मिटे? कितनी पूजा किया, कितना व्रत किया, कितने मंदिर में गए, तो पाप मिटे कि बढ़ते गए हैं? दुनिया को पढ़ के देख के सुन के सब कुछ करके देखा, अभी समय आया है जो इतने जन्मों में जो कुछ नहीं किया है वो अंतिम जन्म में अभी करना है, कि थोड़े से समय के अंदर विधि पूर्वक अगर आप कर्म करते हो, योग करते हो, बहुत जन्मों का जो पाप है, क्योंकि बाप बच्चों को दुख देना नहीं चाहता है, मेहनत करना नहीं सिखाता है, इतना सहज आराम से बैठो अपने आप से बात करना है, हम औरों से बात करना जानते हैं, अपने आप से बात करो कि मैं कौन, तो बुद्धि इधर उधर भटकेंगे नहीं। आपके पास ज्ञान है, सुना हुआ है, फिर पूछो मेरा रूप कैसा है, फिर पूछो मेरे गुण कौन से हैं। तो मन और बुद्धि आपके इच्छा के अनुसार विधि अनुसार चल रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है। तो एक विधि पूर्वक मन बुद्धि को एक ठिकाने पर ले जाते हो, एकाग्र करते हो एक जगह पर, तो शक्ति प्राप्त होती है। और उसी शक्ति को कहा शांति की शक्ति है ये, तो ये सर्व शक्तियां जमा हो जाती है। तो संसार में जब चलते हो, सामने कोई भी बिना मतलब का भी कुछ भी कारण हो, बहुत जन्मों से पहले 100 रुपया लिया था तो आज लेने आएगा ना, आपको पता ही नहीं मैंने कब लिया था, लेकिन उसको तो याद है, वो लेने आएगा तो आप कहेंगे हमने तो कुछ दिया ही लिया ही नहीं इससे, और गुस्सा करेगा, कुछ बोलेगा, तो उस समय आपकी बुद्धि अगर दिव्य है, देखते ही पता चलता है ये गुस्सा क्यों कर रहा है, अरे मैंने कुछ किया था, मेरा हिसाब किताब है, हमें दे करके चुप तो करना चाहिए। तब बाबा ने कहा उस समय सहन करो, संभालो, चुप रहो उस समय। हां रहना चाहते हो भी आप, लेकिन वो शक्ति कहां से आएंगे? पता भी आपको उस समय है मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, बाबा ने कल कहा था, याद भी है, लेकिन ब्रेक नहीं लगता है, शक्ति नहीं है। कभी कभी ऐसा होता भी है, जानते हो, समझ भी रहे हो, लेकिन ताकत नहीं है, ज्ञान समझते हुए अगर ताकत नहीं तो ब्रेक नहीं लगता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। तब का ज्ञान ही सब कुछ नहीं है, ज्ञान और शक्ति ये दोनों चीज चाहिए। तो इस विधि पूर्वक अगर अभ्यास करते हो तो संसार में हर कदम में परिस्थिति है, समस्या है, तो आपके सामने तुरंत निवारण आएगा, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे करना। मैं आपको एक अनुभव बताता हूं कि कैसी परिस्थिति आती है। एक बार मैं बॉम्बे गया था, तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, एक जगह हमको क्लास करना था, लेकिन रात लेट हो गया था, तो बहुत भाई बहने थे, पहली दफा मैं वहां गया था, तो एक बहुत बड़ा पहले ही परिचय कराया था कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, हार्ट का सर्जरी करता है, पहली दफा आके बैठा है क्लास में। तो क्लास होते ही उठ करके खड़ा हो गया कि भाई जी मेरा एक प्रश्न है, और हमको 8 बजे स्टेशन में पहुंचना था, 8 सेंटर में बज गए थे। हमने कहा डॉक्टर साहब लेट हो गया है, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए दोबारा आऊंगा, तो बैठ गया, बेचारा अच्छा था। फिर और आगे चला गया, लास्ट में एक बहुत बुजुर्ग व्यक्ति था, 90 साल का होगा, तो वो सामने उठ के खड़ा हो गया, भाई जी मेरा आपने बहुत अच्छा ज्ञान सुनाया, मुझे समझ में आया, लेकिन मेरा एक सच्चे दिल से मैं एक बात बता तो आप सुन लीजिए। हमने कहा महात्मा जी मैं दोबारा आऊंगा। नहीं नहीं एक ही मिनट का काम है। तो कहने लगा मैं यहां 25 साल से गीता का आश्रम संभालता हूं, और भगवान हमारे दिल में रहता है, अभी 1 घंटा ज्ञान सुना है, शिव बाबा कहां रहता है, कैसे योग करना चाहिए, अभी हमारे पास भी समय नहीं है, 1 मिनट के अंदर हां जी करूं, हां आपके दिल में भगवान रहता है, वो संतुष्ट हो जाएगा, 1 घंटा जो ज्ञान सुनाया वो पानी में मिल गया, व्यर्थ चला गया, है ना। अगर ना करो तो उसको दुख हो जाएगा, जवाब देना पड़ेगा, समय नहीं है, तो क्या करेंगे आप? संसार में चलते समय ऐसे एक एक समय, एक एक जगह पर ऐसी परिस्थिति आती है, एक सेकंड के अंदर आपको निर्णय लेना पड़ता है। जैसे आप ट्रेन में जा रहे हो, अचानक कुछ हुआ, आग लगे, आप क्या करेंगे? चारों तरफ भागा दौड़ी करेंगे? नहीं, कहां जाएंगे आप दौड़ करके, उस भागा दौड़ी में खत्म। तो बाबा कहता है उस समय ऐसी परिस्थिति, अचानक कभी भी कुछ हो सकता है, अगर बुद्धि की लाइन क्लियर है, एक सेकंड उसको हमने दृष्टि दिया, तुरंत बुद्धि के अंदर आया, महात्मा जी आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो, भगवान आपके दिल में है, सिर्फ जानना चाहिए वो किस रूप में आपके दिल में है। तो बताए किस रूप में है? हमने कहा अभी समय लगेगा। नहीं नहीं बताओ। तो कहा, फिर एक सेकंड में सुनाना पड़ा। हमने कहा आपका आश्रम कहां है? क्योंकि यहां से 4 किलोमीटर दूर है, तो आप यहां खड़े हुए अपने आश्रम देख सकते हो क्या? हां मैं देख सकता हूं। तो हमने कहा हमको भी दिखाओ। नहीं आप देख नहीं सकते हो। हमने कहा आप यहां खड़े होकर 4 किलोमीटर जो दूर जो आपका आश्रम है कैसे देखते हो आप? कि मैंने देखा हुआ मुझे याद है। हमने कहा ऐसा ही भगवान मुझे जवाब चाहिए था। तो भगवान आपका मां बाप है, आपने उनको एक बार देखा था, लेकिन वो अपने घर में बैठा हुआ है, आपके दिल में क्यों बैठेगा? हां आपके दिल में है, आपने एक बार उनको देखा था, उसका चित्र आपके बुद्धि में है, दिल में है। एक सेकंड के अंदर काम हो गया, उसकी भी बात रखी। हां आपके दिल में जरूर है, चित्र है, चैतन्य अपने घर में है, आश्रम वहां ही है और आपके दिल में भी है। आपके दिल में क्या है? उस आश्रम का चित्र है। चैतन्य तो जो आश्रम है, तो मकान तो 4 किलोमीटर दूर है ना, वहां ही है और आपके दिल में भी है, दोनों बात बन गई। तो ऐसी युक्तियां संसार में चलते समय एक सेकंड के अंदर चाहिए। आपको मेरे पास समय नहीं, सामने वालों को बाबा ने कहा दुआ कब जमा होंगी? बाबा ने कहा 3 प्रकार के खजाने जमा करना है, एक शक्तियों के खजाने जमा करना है, एक दुआएं भी चाहिए। दुआएं अपने आप नहीं मिलती है, सामने वालों को संतुष्ट करना पड़ता है। संतुष्ट कैसे करेंगे? किसी को कुछ खाना देके संतुष्ट करो, किसी को कपड़ा देके संतुष्ट करो, किसी की समस्या को सुलझाओ, किसी को ज्ञान को स्पष्ट करके समझाओ, बहुत प्रकार के तरीके हैं, है ना। किसी की समस्या होता है, एक सेकंड के अंदर अगर आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर है, तुरंत आपके मुख से निकले ऐसे करो ऐसा हो जाएगा। तो ये कौन कराता है? तब कहा बाबा ने कहा दुआएं कैसे जमा होंगी? स्वयं भी संतुष्ट और सामने वालों को भी आप संतुष्ट तब कर सकते हो जब आपकी लाइन क्लियर है। तो ऐसे सामने वाले हर प्रकार के परिस्थिति आएंगी, हर प्रकार के समस्याएं आएंगे, हर प्रकार के प्रश्न लेके लोग आते हैं, आएंगे भी, लेकिन आप कहेंगे हमको पता नहीं है, आप चुप रहेंगे तो आपकी दुआ कैसे जमा होगा? कैसे, कहां, कौन देगा दुआएं? परिस्थिति आएंगी, समस्या भी आएंगी, तो आपके पास ये शक्तियां चाहिए। इसलिए बाबा कहता है बच्चे थोड़ा सा समय है, विधि पूर्वक थोड़ा समय निकाल के तपस्या करो, ज्ञान विधि पूर्वक एक ही मुरली के पॉइंट ले लो रोज, उसका मनन चिंतन करो अच्छी तरह से, आचरण में ला लो कि अपने आप सार बार बार चिंतन करो मुझे क्या करना चाहिए, बाबा ने क्या करने के लिए कहा। खाली मन है तो जरूर व्यर्थ बातों में इधर उधर जाएगा, स्वयं को भी, स्वयं का मन भी परेशान हो जाएगा, दूसरों को भी परेशान करेंगे आप, क्योंकि उनको भी आप अच्छी बातें नहीं देते हो, इधर उधर के समाचार देते हो, है ना। तो स्वयं भी सुखी होना चाहिए, दूसरों को भी सुख देने के लिए हमारे पास कौन सा साधन है? सहज है, कोई मेहनत नहीं। बाबा ने ज्ञान सुनाया, आप भी याद रखो, चिंतन करो, सामने कोई आया उसको भी सुना दो, वो भी, उसका भी चेहरा हर्षित हो जाता है ना, खुश हो जाता है। तो ये बहुत सहज रास्ता है, कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। और बाबा सदा रोज बच्चों को देता है, सहज मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है। कई माताएं कहेंगे हमको पढ़ना भी नहीं आता है, पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, एक मुरली के पॉइंट बुद्धि के अंदर याद रखना चाहिए, आज बाबा ने मुझे ये कहा था, चलते फिरते बार बार चिंतन करते रहो, सामने कोई मिला उसको सुनाओ, तो अपने आप दुआएं प्राप्त होती है, अपने आप उसके मन में आता है, देखो आज भाई जी ने बहुत अच्छी बात सुनाई है ना, ये है दुआ। वही आप गलत बातें सुना दो, देखो ये व्यक्ति आया क्या सुना के गया, मन में परेशान कर, मन में चिंता, मन को चिंता में डाल दिया है ना। तो हमें देखना चाहिए हम औरों को क्या दे रहे हैं, हमारे संबंध संपर्क में कोई आता है हम क्या दे रहे हैं उसको, क्या है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, साधारण है, तो भी बहुत बड़े एक एक रत्न दे सकते हो, क्योंकि रत्नागर के बच्चे हैं हम, कोई खर्चा नहीं, कोई मेहनत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं है, तब इसका नाम है सहज राज योग है, देखने में साधारण है ना, तो सिंपल सहज तरीका है। तो बाबा ने कहा दुआएं जमा करो, स्वयं भी संतुष्ट, कोई इधर उधर के विचार नहीं, सामने कोई आया उसको भी संतुष्ट कर सकते हो आप, क्योंकि बाबा बहुत सारी युक्तियां बताता है, हर एक मुरली के अंदर आप ध्यान दे दो, रोज एक एक पॉइंट ले लो, 30 दिन के अंदर 30 मुरली के पॉइंट्स के आप अनुभवी हो, सिर्फ पॉइंट लिखना नहीं, पॉइंट लिख करके डायरी भर गई, लेकिन एक एक पॉइंट को, एक ही मुरली के पॉइंट ले लो, कर्म करते करते चिंतन करो, मनन करो, सामने कोई आया उसका वर्णन करो, उसको सुनाओ, तो मन चलता है, अनुभव जमा हो जाता है। कल अगर आपको कहा जाए इस पॉइंट पर आप क्लास कराओ, समझाओ, एक घंटा आप अच्छी तरह स्पष्ट करके समझा सकते हो, क्यों, चिंतन करके आपने जमा किया है, जमा किया हुआ खजाना किसी समय आप किसी को दान कर सकते हो, अगर आपने देने वाले ने दिया, आपने मनन चिंतन करके जमा नहीं किया, कल ऐसी परिस्थिति आ जाएंगी देने की, तो आपके पास देने वाले ने दिया था लेकिन हमने जमा नहीं किया, तो क्या कर सकेंगे, तो कहेंगे बाबा ने देखो इनको ऐसा बनाया, इनको ऐसा बनाया, देने वालों ने सभी को मुरली सुनाया, खजाने दिए, लेकिन जमा करने की विधि चाहिए, और वो आज सुनाया आज ही करो, कल सवेरे दूसरा पॉइंट सुनाएगा, कल एक एक पॉइंट ले लो, क्यों, हमारी बुद्धि बहुत कुछ ग्रहण नहीं कर सकती है, धीरे धीरे एक एक बूंद बूंद मिलकर के तालाब बन जाएगा, है ना, तो धीरे धीरे चलो। तो ये जमा करने का है। तीसरा बाबा ने कहा पुण्य भी जमा करना चाहिए, पुण्य का खाता भी चाहिए, कभी कभी देखा गया सेवा करते हम, नाम मान शान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, है ना, तो जमा होगा, किसी व्यक्ति को देख करके हम सेवा करते हैं, सामने कौन है, व्यक्ति है, इन्होंने कहा इसलिए हम कर रहे हैं, तो व्यक्ति देगा। अगर किसी प्रकार की सेवा करते हो, शुभ बाबा को याद रखते हुए सेवा करते हो, तो बाबा ने वादा किया है बच्चे मैं एक का पदम गुना दूंगा। व्यक्ति को सामने रख करके कुछ भी करते हो, व्यक्ति एक का एक गुना देगा। सेवा करते समय अगर हमारे बुद्धि में व्यक्ति है, इन्होंने कहा है, इनको देख करके हम सेवा कर रहे हैं, तो एक का एक गुना जमा होता है। अगर कोई भी सेवा करते हो, भंडारे में 5 रुपया 1 रुपया भी डालते हो, आप सब्जी भी काटते हो, कोई भी सेवा करो, कहां सेवा कर रहे हो आप, किसकी सेवा कर रहे हो, किसके श्रीमत के अनुसार कर रहे हो, बुद्धि में कौन है। अगर शिव बाबा को, बाबा का यज्ञ है ये, बाबा ने कहा था बच्चे ऐसे आत्मा समझ के सेवा करो, दुआएं जमा होंगी, शिव बाबा ने कहा था बच्चे एक का पदम गुना मैं दूंगा, ये स्मृति में रखते हुए किसी प्रकार की सेवा करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है, और वो सेवा आपको देखना बिल्कुल हल्का करता है। कितना भी थकावट वाले हो तो आपको थकावट नहीं महसूस होता है, क्यों, बाबा को भगवान को याद करते हैं, देने वाला कौन है, वो शक्ति देता है, सकाश देता है, तो सेवा करते। तब बाबा ने कहा बेहद की दृष्टि चाहिए, हद व्यक्ति, देखा गया 99% सेवा करते समय, कुछ भी करते समय हमारे सामने व्यक्ति आता है। इन्होंने हमको कहा, ये हमारी टीचर बहुत अच्छी है, हमें सहयोग देती है, हमें आगे रखती है, हमें सदा सेवा में आगे बढ़ते, इसके लिए हम सेवा कर रहे हैं, नहीं। शुभ बाबा को सन भगवान की सेवा आए, हाँ निमित्त को रिस्पेक्ट रखना है, निमित्त का मानना है, हाजी करना है, नम्रता चाहिए, ना नहीं है तो निमित्त को सामने, निमित्त है अपने आप आएगा वहां, निर्माणता भी आएंगी, लेकिन बुद्धि में एक स्मृति चाहिए, हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान ने वादा किया है कि मैं एक का पदम गुना दूंगा, है ना, कि एक का एक गुना। अगर सेवा करते समय व्यक्ति बुद्धि में आ गया तो एक का एक गुना जमा होता है, तो जमा का खाता भी है, विधि भी है, क्यों, ये भाग्य विधाता है। शिव बाबा कौन, बच्चों का भाग्य बनाने आया है, भाग्य बनाने की विधि बताता है, इसलिए कहते हैं भाग्य विधाता आए हो। कौन सी विधि है कि भाग्य कब जमा होता है, कितना गुना जमा होता है, किस विधि से सेवा करना चाहिए, किस विधि से बाबा को याद करना चाहिए, किस विधि से दुआएं जमा करनी चाहिए, विधि विधाता का, उस विधि पूर्वक करते हो तो एक का पदम गुना जमा होता है। नहीं तो दुनिया में भी सेवा करते हैं, कितने लोग देखो गरीबों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को पट्टी लगाते हैं, कहां भूकंप होता है, कहां और कुछ होता है, कितनी सेवा करते हैं, दुनिया में भी सेवा करने वाले हैं, सोशल वर्कर्स है, ऐसे नहीं नहीं है, बहुत प्रकार की सेवा, हमसे भी 100 गुना ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा कुछ करते हुए भी हमारा दाता कौन है, कौन है वो सर्वशक्तिवान हमारा दाता है, हमारा हम किस बैंक में जमा करते हैं, ऐसा बैंक है बाबा ने कहा संगम पर ही खुलता है ये, और संगम पर जो जमा करते हो सारे कल्प आपकी पालना करेगा, ऐसा बैंक सिर्फ संगम पर ही खुलता है। अगर आप कहेंगे नहीं हम थोड़े दिन के बाद करेंगे और बहुत समय पड़ा हुआ है, अभी सफल नहीं करते, थोड़े दिन के बाद करते हैं, नहीं, थोड़े समय के अंदर बैंक क्लोज होने वाला है, पीरियड होता है, तब बाबा ने संगम का थोड़ा सा समय है, अचानक परिवर्तन होने वाला है। तो इन सब बातों को देखते हुए तन मन धन सफल करो, जितना समय मिलता है इस तन के द्वारा जिस प्रकार जो भी कर सकते हो, ये तन ये श्वास सफल करना चाहिए। आपके पास मन है, ज्ञान का चिंतन करो, और सामने कोई आता है किसी को ज्ञान के पॉइंट सुनाओ। धन है, धन इधर उधर वेस्ट न करते हुए अच्छे कार्य में लगाओ, तो ये सारे कल्प पुण्य जमा करता है। और किसके कहने के अनुसार कर रहे हो, हमने कहने से नहीं, शिव बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर करते हो तब एक का पदम गुना जमा होता है। हर कार्य के लिए बाबा श्रीमत देता है, एक शब्द है, कभी कभी होता है कि हमें ये सेवा अच्छा लगता है कि उसका फल कौन देगा, आप स्व इच्छा से कर रहे हो तो उसका शिव बाबा जिम्मेवार नहीं है। अगर बाबा के श्रीमत के अनुसार सेवा करते हो तो बाबा जिम्मेवार है। कभी कभी सेवा के क्षेत्र में होता है आपको लगता है मुझे ये अच्छा लगता है, मैं ऐसा मुझे अच्छा लग रहा है, हाँ आपको अच्छा लग रहा है करो, लेकिन उसका रिटर्न कौन देगा, तो आपने अपनी इच्छा से किया, मन उसको कहा मन मत से किया करो, फल भी आपको ही मिलेगा, आपकी इच्छा के अनुसार क्या आप ही आपको मिलेगा। अगर शुभ बाबा के श्रीमत के अनुसार अगर कर्म करते हो तो शुभ बाबा बंधा हुआ है। तब बाबा ने अभी शिवरात्रि पर हरेक बच्चों को एक एक सौगात दिया है, सबको दिया है, और कहा अमृत वेले उठ करके रोज देखना कि ठीक है, खराब तो नहीं हुआ है, वो याद करो कि बाबा ने कहा हिम्मत का एक कदम और 1000 कदम बाप की मदद। संसार में हर सेकंड कोई परिस्थिति आती है, हिम्मत रखो, तुरंत उछलो नहीं, तुरंत उत्तेजित नहीं हो जाओ, तुरंत सोचो नहीं ये क्यों क्या सोचो नहीं, पता है इन एडवांस बाबा ने कहा हिम्मत रखो, चुप रहना है, सहन करना है, हिसाब किताब चुक तो करना है। अगर एक शब्द भी मुख से निकल गया तो 5000 साल के लिए दोबारा अकाउंट जमा हो गया। हिसाब किताब चुक तो करने आए हो या जमा करने आए हो, ये दो है। अगर आप कहेंगे उन्होंने 100 इतना गुस्सा किया, हां किया था जरूर, लेकिन आपने क्या किया, एक ही शब्द बोला था लेकिन एक ही बूंद बस, है ना। एक ग्लास दूध के अंदर एक बूंद पॉइजन डालो तो क्या हो जाएगा, है ना। तो इसलिए कहा एक शब्द भी बोला तो भी 5000 साल के लिए हमने हिसाब किताब बना दिया। इसलिए कहा कर्मों की गुह्य गति है। कभी कभी कर्म करते समय भी अच्छी भावना से कर्म करते हैं। बहुत सुंदर महाभारत के अंदर एक दृष्टांत आता है कि कर्मों का गुह्य फल है कि कर्म करते समय देखा गया, देख लो भीष्म पितामह थे, अंत में उनको तीर की शैया पर सुलाया था, तो लास्ट में पूछा कि मैंने कोई भी जीवन में पाप नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया, आज मुझे कोई शैया नहीं मिला, इसे तीर की शैया पर क्यों सुलाया है, दर्द लग रहा है, कांटे चुभ रहे हैं। तब कहा बचपन में जब आप घोड़े गाड़ी चला रहे थे आपकी मनसा बहुत अच्छी थी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, आपने घोड़े गाड़ी रोकी, तीर उठाया और सांप को बाजू में किया, लेकिन बाजू में जो किया आपकी मनसा अच्छी है, शुभ भावना भी थी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन बाजू में जो किया वो कहां गिरा, कांटे के झाड़ पर गिरा। जितने कांटे उस शरीर को लगे थे उतने कांटे आज आपके शरीर को लग रहे हैं। कभी कभी कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है, कर्म करते करते कभी कभी अपने मत से, तब बाबा ने कहा श्रीमत हर जगह यूज करता है बाबा, भगवान के श्रीमत के अनुसार करते हो, गलत भी हो जाए तो शिव बाबा जिम्मेवार है। बाबा आपने कहा था आपको, तब बाबा कहता कदम कदम पर बाबा को पूछ के कर्म करो। बाबा के कमरे में बैठो, आप पूछेंगे अभी बाबा कहां है, बाबा के कमरे में बैठो, कोई भी सेवा करने से पहले बाबा से पूछो, बाबा कहीं गया नहीं, इधर ही है। बाबा कहता है रोज मैं देखता हूं सुनता हूं, हर 15 दिन में आकर के बच्चों से मिलता भी है, कहीं गया नहीं है। तो बाबा के कमरे में बैठो, बाप हमारा टीचर भी है, सदगुरु भी है, मां बाप भी है, तो बाबा से बात करो, आज नहीं तो कल आपको जवाब मिलेगा। बाबा कैच करता है, तुरंत टचिंग भी देता है, इसलिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। और वो कब होंगी, ज्ञान मन में चिंतन हो, सवेरे आधा घंटा शाम को आधा घंटा विधि पूर्वक बैठ करके तपस्या करते हो और सामने वाले व्यक्ति को देखते कुछ ना कुछ दान देते हो, दुआएं प्राप्त करते, दुआओं का खजाना चाहिए, और कोई भी सेवा करते हो बेहद की दृष्टि से सेवा करते हो, हद के व्यक्ति वैभव किसी परिस्थिति को देखकर किसी को देख करके सेवा करते हो तो पुण्य जमा नहीं होता है, क्या हद की दृष्टि है ना। किसी को पानी का ग्लास देते हो अगर उन्होंने मुस्कुराया नहीं है तो संतुष्ट होंगे नहीं, पानी का ग्लास दे करके आप चाहते हो उन्होंने ओम शांति कहना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, मन कुछ दे करके आप कुछ लेना चाहते हो। यह मनुष्य का देहधारियों का नेचर है कि कुछ देने के बाद वो कुछ इच्छा रखता है, हमें कुछ मिलना चाहिए, ह्यूमन एक्सपेक्टेशंस है, मनुष्य के नेचर है। अगर अभी आज हम मनुष्य नहीं है, हम कौन है, आत्माएं हैं, आत्मा की नेचर नहीं है, आत्मा दाता का बच्चा है, देने वाला है। अगर अपने को आप शरीर समझते हो तो शरीर के अंदर ये संस्कार ये स्वभाव है, कुछ देने के बाद तुरंत कुछ चाहता है, तो ह्यूमन नेचर है। हम कौन है, आत्माएं हैं। अगर आत्मिक स्मृति है, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, तब बाबा ने आज कहा था बार बार अभ्यास करो कि मैं कौन, मैं आत्मा हूं। अगर ये स्मृति है, आत्मा किसका बच्चा है, देने दाता का बच्चा है, देने वाला है, तो कभी भी कुछ देने के बाद आपके मन में इच्छा नहीं होती, मुझे इन्होंने कुछ देना चाहिए, इनसे मुझे कुछ मिलना चाहिए, इन्होंने मुस्कुराना चाहिए। नहीं, वो मुस्कुराए नहीं देवे, मुझे देना है, मेरा पार्ट है देने का, मुझे देना है, चाहे वो देवे या न देवे। इच्छा रखी तो बाबा कहता है इच्छा अपवित्रता है। पवित्रता के बाबा ने डेफिनेशंस बताया। तो पवित्रता किसको कहती है? ब्रह्मचर्य एक ही नहीं है पवित्रता, इच्छा भी। कभी कुछ सेवा करके कुछ तुरंत प्राप्ति चाहते हो आप, किसी ने सम्मान देना चाहिए, मानना चाहिए हमारा, रिस्पेक्ट चाहते हैं, रिगार्ड चाहते हो, हमको सहयोग देना चाहिए। हाँ, सामने वाला देवे या न देवे, हम उनसे उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम शिव बाबा की यज्ञ की सेवा कर रहे हैं। सेंटर में भी करो, सफाई कर रहे हो सेंटर में, किसी प्रकार की सेवा करो। अगर इस बुद्धि में है तो दुआएं पुण्य जमा होता है, तो ये जमा का खाता अगर भरपूर है तो किसी प्रकार की परिस्थिति समस्या आएंगी तुरंत आपके मन में विचार आता है ऐसे करना चाहिए, निवारण सामने आ जाता है कि शक्ति भी है और समझ भी है, ज्ञान भी है, दोनों है। योग किया है सब प्रकार की शक्ति है, किस समय चुप रहना चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करते हो, नहीं बोलना है। किसी समय ऐसी परिस्थिति है कहीं जवाब देना भी पड़ता है, बहुत नम्रता से निर्माणता से जवाब निकलेगा, क्यों? स्वयं के ऊपर स्वयं का कंट्रोल है, शक्तियां है, नियंत्रण है। तब कहा बाबा ने कहा स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा जमा करो, जमा का खाता देख लो कितना जमा किया है। क्योंकि सृष्टि में नियम है, एक बीज नहीं बोलो तो 100 बीज लगेंगे, लग सकते हैं। गेहूं का बीज एक बीज खेती में नहीं डालो तो अनाज लगेगा, लग सकता है, नहीं है ना? एक दाना तो बोना पड़ेगा ना, तो नियम है। अगर भविष्य में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस चाहिए तो यहां एक एक दाना बोना पड़ेगा। तन निरोगी काया चाहिए, इस तन से यज्ञ की सेवा करेंगे तो यज्ञ निरोगी काया देगा। धन की पूंजी जमा करनी है, मन के द्वारा सेवा करना है तो मन निर्मल शांत स्वच्छ होगा, अपने आप तो नहीं होगा ना। आपको मेरा तन ठीक नहीं, बहुत बुजुर्ग है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं, तो किसको बताएंगे? अगर खेती में गेहूं का बीज बोया ही नहीं है आपने तो गेहूं कैसे लगेगा, लग सकता है क्या, है ना? तो किसको बताएंगे कारण? आपने बोया नहीं, समय सीजन आके चला गया, आपके पास गेहूं है ही नहीं है, तो एक दाना बोना पड़ता है, तब हजार दाने लगेंगे, 50 दाने लगेंगे, 100 दाने लगेंगे, लेकिन एक तो बोना पड़ता है। तो ये विधान है, इस विधि से अगर आप करते हो तो जमा का खाता देख सकते हैं। तो इस प्रकार योग कैसे करना चाहिए, जमा करना चाहिए, कर्म कैसे करना चाहिए और दुआएं कैसे जमा करना चाहिए, तीनों है। तब बाबा ने कहा बुद्धि स्वच्छ होती है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हो तुरंत निवारण सामने आता है, हमें ऐसे करना चाहिए। भले सामने वाला सहयोग देता नहीं देता भी है, लेकिन मुझे ये करना चाहिए कि बुद्धि स्वच्छ है, स्वच्छ बुद्धि, निर्मल बुद्धि, नॉलेजफुल बुद्धि, शक्तियों से भरी हुई बुद्धि, तुरंत निर्णय दे। जिसके पास जेब में बहुत पैसे भरे हुए हैं, कोई भी बात आ गई तुरंत पैसे देगा ना, तुरंत पैसे दे करके टिकट ले लेगा। अगर देखा ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का डब्बा आपका जो टिकट लिया फुल भर गया है, आप एक्स्ट्रा पैसा दे करके दूसरा टिकट ले लेंगे। अगर पैसे नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो ये भी ऐसा ही है। अगर आपके पास सब प्रकार का धन है, पुण्य जमा किया हुआ है, तो तुरंत ये अमानत है, ये एक सिर्फ जन्म के लिए नहीं, सारे कल्प में काम में आएगा। तो ये धन आप यूज करके समाधान प्राप्त कर सकते हो, निवारण प्राप्त कर सकते हो। तो ये विधि चाहिए, तो इस प्रकार अभ्यास करना चाहिए। तो अभी हम 7:30 बजे तक जो विधि बताई, कमेंट्री सुनना चाहते हो कि आप अपने आप करना चाहते हो, दो तरीके हैं। जैसे मां बच्चों को कहानी सुनाती रहती है, और बच्चे अपने आप सोता है झूले में, ऐसे सोना चाहते हो आप कि आप अपने आप यात्रा करना चाहते हो? दो प्रकार के हैं। बाबा ने कहा योग की यात्रा है, कहा यात्रा में मन बुद्धि चलेंगे ना, तो यात्रा करने की विधि बताई, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण, अपने आप से बात करते हुए आप कमेंट्री करो। अगर मैं बहन जी कह रही थी आप सुनाते जाओ और आप आंखें बंद करके झूमते रहेंगे तो क्या करना चाहते हैं आप? चलना चाहते हो कि अंगुली पकड़ के ले चलना चाहिए? छोटे बच्चे होते हैं उनको अंगुली पकड़ के ले जाते हैं, अभी आप छोटे नहीं बड़े हैं, है ना, स्वयं चलना सीखो। अभी 15 मिनट ऐसे योग करके बहन जी को दिखाओ, बहन जी को पता चलेगा बाबा ने एक बार कहा था बच्चे कॉमेंट्री से योग नहीं कराओ। तो वो नए है बिल्कुल, कुछ जानते नहीं है, उनको मुंह में खाना खिलाना पड़ता है। आप तो बड़े बच्चे हो, ठीक है।
अभी बैठे बैठे अपने आप से बात करो कि मैं कौन, मैं एक चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु इस भ्रकुटी के बीच में, सफेद स्वच्छ पवित्र आत्मा चमक रहे हूं। सर्व शक्तियों से संपन्न मैं आत्मा, सर्वशक्तिवान शिव बाबा का संतान हूं। जैसे बाप सदा दाता है, ऐसे ही मैं भी बाबा का बच्चा हर एक आत्मा को, अपने भाइयों को देखते ही शुभ भावनाओं का दान देता हूं। मैं आत्मा सारे दैवी गुणों से संपन्न, जैसे बाप दुख करता है सुख करता है, ऐसे ही मैं आत्मा भी हर एक का दुख दूर करने वाला, हर एक आत्मा को सब प्रकार से सुख देने वाला मैं आत्मा। हर एक आत्मा के प्रति चलते फिरते किसी पर भी दृष्टि जाते ही हर एक आत्मा को दुआ देने वाली आत्मा हूं। हर एक आत्मा के प्रति शुभ चिंतक हूं। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर इस शरीर इंद्रियों के द्वारा सदा ही श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा इस कर्म इंद्रियों के द्वारा हर एक आत्माओं को सब प्रकार के सुख देने वाली आत्मा मैं आत्मा सुखदाता का बच्चा हूं सुखदेव हूं मैं मेरे कर्मों से मेरे बोली से मेरे विचारों से हर एक आत्मा को सुख और शांति मिलनी चाहिए ऐसे मैं आत्मा हूं हर एक आत्मा को सुख शांति देने वाली इस मुख से कभी भी किसी को दुख नहीं मिल सकता है ऐसे मैं पवित्र श्रेष्ठ आत्मा हूं
सुख हमें है कितना सुख हमें है कितना। किस्मत पे हम इतराते हैं गाते हो के मत वाले।